आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीक्षा है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 6 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको इस चैप्टर की समरी दे देती हूँ और उसके बाद हम चैप्टर को लाइन टू लाइन रीड करना शुरू करेंगे। एब्राइट, जो इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट हैं, यानी जिनके अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व करती है, वो अपने मम्मी पापा के इकलौती संतान थे। अपने बचपन में वो अजीबोगरीब चीजों को इकट्ठा करने में, उनको कलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा रुचि रखा करते थे। एब्राइट ने किंडरगार्टन में तितलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उसने सिक्के, चट्टाने और फॉसिल्स को इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया था। एब्राइट की माँ ने उसे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। वह उसे दौरों पर लेकर जाया करती थी। एब्राइट की माँ ने उसके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा और बाकी सारे जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो सब खरीद लिए थे। एब्राइट की माँ ने उसे एक बच्चों की किताब दी। ये थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इस किताब ने एब्राइट के लिए विज्ञान की दुनिया को खोल दिया। इस किताब ने उसे बताया कि किस तरह मोनार्क तितलियां मध्य अमेरिका चली जाती हैं। सातवीं क्लास में एब्राइट को ये संकेत मिला कि असल में विज्ञान क्या था। उसने अब सच वाले प्रयोग, यानी वास्तविक प्रयोग करने का निश्चय कर लिया था। उसने डॉक्टर अर्कहार्ट को विचारों के लिए एक पत्र लिखा। उसने प्रयोगों के लिए काफी सुझाव भेजे। इन प्रयोगों ने एब्राइट को अपने हाई स्कूल के दौरान काफी व्यस्त रखा, यानी वो काफी बिजी रहा। उसने स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता में अनेक पुरस्कार जीते। एब्राइट ने एक वायरल बीमारी के कारण ढूंढने के लिए प्रयोग किए। इससे एक अज्ञात हार्मोन की खोज हुई। एब्राइट ने हार्मोन सिद्धांत पर काम करना जारी रखा। 1.5 साल के बाद उसे कोशिका के जीवन के बारे में नई बातों का पता चला। आखिर में उसने पता लगाया कि डीएनए एक ऐसी चीज है जो वंश का नियंत्रण करती है। एब्राइट के सामाजिक विज्ञान के अध्यापक ने एब्राइट की रुचियों की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि एब्राइट की जीत इसलिए हुई क्योंकि वो हमेशा अच्छे काम करना चाहता था। एब्राइट में वो सभी गुण मौजूद थे जो एक वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत जरूरी हैं। वो है एक बहुत तेज दिमाग से काम शुरू करना, उत्सुकता को बढ़ाना और सही चीजों के लिए जीतने की इच्छा शक्ति को पाना। तो स्टूडेंट्स, ऐसे एक साइंटिस्ट बना। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी पेज नंबर 32 पर आ जाइए। चैप्टर 6, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड द सेरिल स्कॉलर अवार्ड एंड द करिंग प्लो अवार्ड for biochemistry and molecular biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. Students, Richard Ebright ko do bahut hi mahan puraskar mile hue the aur unka jo titliyon ko ikhatta karne ka fascination tha, jo unki ruchi thi, uski wajah se unke liye vigyan कि दुनिया के रास्ते खुल गए थे। रीड एंड फाइंड आउट। पढ़िए और पता लगाइए। फर्स्ट, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। एक किताब रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट कैसे बन गई। क्वेश्चन टू, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। रिचर्ड एब्राइट की माँ ने उसकी मदद कैसे की। एट द एज ऑफ 22, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। 22 साल की उम्र में एक भूतपूर्व वर्ष के स्काउट ने वैज्ञानिक जगत में एक नए सिद्धांत के साथ खलबली मचा दी। रिचर्ड एच एब्राइट और उसके कॉलेज के साथी ने इस सिद्धांत की प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस नामक लेख में व्याख्या की। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स in science and other fields, and it all started with butterflies. ये पहला ऐसा मौका था जब इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने कॉलेज के छात्रों के लेख को प्रकाशित किया था। खेलों में ये एक लीग बनाने और 15 साल की उम्र में पहली बार बल्ला पकड़ते हुए घरेलू क्रिकेट में एक रन बनाने जैसा था। रिचर्ड एब्राइट के लिए विज्ञान और दूसरे क्षेत्र की लंबी श्रृंखला में यानी लंबी लाइन में एक नई उपलब्धि थी और ये सब तितलियों के साथ शुरू हुआ। एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसल्वेनिया। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. But there was one thing I could do. Collect things. एब्राइट पेनिसिल्वेनिया के नॉर्थ ऑफ रीडिंग में अपने माता पिता के इकलौते बच्चे के रूप में बड़े हुए थे। उन्होंने कहा, वहां मेरे पास ज्यादा कुछ करने को था नहीं। मैं फुटबॉल और बेसबॉल तो खेल नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास कोई टीम तो थी ही नहीं। एक चीज जो मैं कर सकता था वो था चीजों को इकट्ठा करना। सो ही डिड एंड डिड ही एवर। बिगनिंग इन किंडरगार्टन एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. इसलिए उसने यही किया और उसने हमेशा ही ये किया, यानी उसने चीजों को इकट्ठा किया। किंडरगार्टन से शुरुआत के साथ एब्राइट ने एक समान निष्ठे के साथ चीजों को इकट्ठा किया। पहले उसने तितलियां इकट्ठा की जो उसकी हर एक गतिविधि की सूचक थी। उसने चट्टानों के अवशेष और सिक्के भी एकत्रित किए यानी इकट्ठे किए थे। वो एक बहुत ही उत्सुक एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल शास्त्री भी बना। कभी कभी रात भर तारों की ओर देखता रहता था। चलिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 33 पर आइए। From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trips, bought him telescopes, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज। शुरू से ही उसमें एक तेज दिमाग और उत्सुकता थी। उसकी माँ ने भी उसकी सीखने की रुचि को प्रोत्साहित किया। वे उसे यात्राओं पर लेकर गई। उसके लिए दूरदर्शी यंत्र यानी टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप, कैमरा और बाकी के ढेर सारे इक्विपमेंट्स खरीदे और बाकी अलग अलग तरीकों से उसकी हेल्प की। I was his only companion until he started school, his mother said. After that, I would bring home friends for him. But at night, we just did things together. Richie was my whole life after his father died, when Richie was in third grade. एब्राइट की मदर ने बताया कि उसके स्कूल जाने में और उसके स्कूल से आने के बाद मैं बस उसके एकमात्र साथी थी। उसके बाद मैं उसके लिए दोस्त घर लाने लगी, लेकिन रात को हम साथ मिलकर काम किया करते थे। रिची मेरा पूरा जीवन था। उसके पिता की मृत्यु तब हुई जब रिची तीसरी क्लास में पढ़ता था। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, हिज मदर सेड। ही लाइक्ड इट, ही वॉन्टेड टू लर्न। रिची एब्राइट यानी रिचर्ड एब्राइट की मदर और उनका बेटा यानी एब्राइट लगभग हर शाम एक साथ डाइनिंग रूम टेबल पर बिताया करते थे। एब्राइट की मदर ने कहा कि अगर उसके पास करने को कोई काम नहीं होता तो मैं उसके लिए काम तलाशती थी, शारीरिक यानी फिजिकल काम नहीं, लेकिन चीजों को सीखने का काम। और वो उसे पसंद भी करता था, वो और नई नई चीजें सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, ही अर्न्ड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। ऑन एवरी डे थिंग्स He was just like every other kid, his mother said. और एब्राइट सीखता था, वो हमेशा स्कूल में टॉप रहता था। उसकी माँ ने कहा कि रोजमर्रा की चीजों में वो दूसरे बच्चों की तरह ही था। By the time he was in the second grade, Ebright had collected all 25 species of butterfly found around his hometown. दूसरी क्लास में जब वो हुआ, एब्राइट ने उस समय तक अपने शहर के आसपास मिलने वाले 25 तितलियों के नमूने इकट्ठा कर लिए थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें वो सारी तितलियों की स्पीशीज के नाम हैं जो एब्राइट ने इकट्ठा किए थे। चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 33 के लास्ट पैराग्राफ पर आइए। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. एब्राइट ने कहा, वो शायद मेरा तितली इकट्ठा करने का अंत था, लेकिन तब मेरी माँ मेरे लिए एक बच्चों की किताब लाई, जिसका नाम था मोनार्क एक्स की यात्राएं, या The Travels of Monarch X. उस किताब ने एब्राइट को बताया कि मोनार्क तितलियां मध्य अमेरिका में कैसे चली जाती हैं।
वहां पर कैसे माइग्रेट कर जाती हैं। और उसने उत्सुक युवा संग्रहकर्ता यानी एग ब्राइट के सामने विज्ञान का संसार पूरी तरह से खोल दिया। अब एब्राइट का साइंस में इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था और इस बुक ने उसके इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया। चलिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 34 पर आइए। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैनेडा। एब्राइट्स मदर wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. Book ke last me pathakon ko titli pravas ka adhyan karne ke liye aamantran tha। उन्हें डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा के प्रोफेसर थे, उन्होंने रिसर्च के लिए तितलियां चिपकाने को कहा था। एब्राइट की मां ने डॉक्टर अर्कहार्ट को लिखा और जल्द ही एब्राइट मोनार्क तितली के पंखों को एक हल्के चिपकाने वाली चीज से चिपकाने लगा। जिस किसी को भी टैग लगी हुई तितली मिलती थी उसे कहा जाता था कि वे उसे डॉक्टर अर्कहार्ट के पास भेज दे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन द लेट समर। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। सो The next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle. From egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would tag the butterfly's wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. रीडिंग के आसपास तितली संग्रह का मौसम गर्मी में 6 हफ्ते के लिए चलता था। अगर आप एक एक करके उनका पीछा करें तो आप बहुत ज्यादा तितलियां नहीं पकड़ पाते। इसीलिए एब्राइट के लिए अगला कदम था तितलियों के एक झुंड को बनाना। वो एक फीमेल मोनार्क को पकड़ता, उसके अंडे ले लेता और उन्हें तहखाने में उनके लाइफ साइकिल के सहारे विकसित करता। अंडे से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा और फिर पूरी एडल्ट तितली। फिर वो तितलियों के पंखों पर टैग लगाता और उन्हें छोड़ देता। काफी सालों तक उसका तहखाना मोनार्क तितलियों के विभिन्न स्तरों में हजारों तितलियों का घर बना रहा था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक ग्राफ भी मिलता है जिसमें बताया गया है कि एब्राइट ने कितनी संख्या में और कितने तरह की बटरफ्लाइज को 6 हफ्तों में कलेक्ट किया था। चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 34 के लास्ट पैराग्राफ पर आइए। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। इट्स टीडियस एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक, एब्राइट सेड। In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured, and they were not more than 75 miles from where I live. फिर एब्राइट ने कहा, आखिर में मेरी तितलियों को टैग करने में रुचि खत्म हो गई थी। ये बहुत ही थका देने वाला काम था और इसमें ज्यादा जानकारी भी नहीं उपलब्ध हो पाती थी। इस सारे समय में उसने कहा कि वो केवल दो तितलियां दोबारा पकड़ी गई जिन पर उसने टैग लगाए थे और वे सभी उस जगह से 75 मील दूर जहां वो रहते थे वहां पर थे। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। फर्स्ट, व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर? एब्राइट को क्या सबक मिला जब उसने साइंस फेयर में जीत हासिल नहीं की? सेकंड, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक? उसके बाद उसने कौन से प्रयोग और कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया? थर्ड, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? एक वैज्ञानिक के बनने के लिए किन क्वालिटीज का होना जरूरी है? चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 35 पर आइए। देन इन द 7th ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर and not get anything while everybody else had won something, Ebright said. His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. 7th class mein एब्राइट को संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या है जब उसने काउंटी साइंस मेले में प्रवेश किया और वो वहां पर हार गया। एब्राइट ने कहा, वहां बैठना और कुछ भी ना जीत पाना बड़ी उदासी भरी भावना थी और कुछ भी ना जीतने की वजह से उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था और वहां पर बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने कुछ ना कुछ जीता था। एब्राइट ने मेंढक के तंतुओं की स्लाइड यानी उनके टिश्यूज की स्लाइड को पेश किया था जिसे उसने माइक्रोस्कोप से दिखाया था। उसने वहां पर यह महसूस किया कि जो जीते हैं उन्होंने कोई रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। उन्होंने बस एक प्रदर्शनी नहीं लगा दी, जो चीज है वो तो है पर उन लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये एब्राइट के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। ऑलरेडी द कॉम्पिटेटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. पहले से ही स्पर्धा यानी कंपटीशन की भावना जो रिचर्ड एब्राइट को एक्साइट करती थी फिर से दिखाई देने लगी थी। एब्राइट ने कहा, मैं जानता था कि अगले साल के मेले के लिए मुझे कोई रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा और वो सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा जानता था वो था इंसेक्ट्स का काम जो मैं पिछले कुछ सालों से कर रहा था। सो ही रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। इसीलिए उसने नए विचार के लिए डॉक्टर अर्कहार्ट को लेटर लिखा और प्रयोगों के लिए ढेर सारे सुझाव उसे मिले। उन्होंने एब्राइट को हाई स्कूल के दौरान पूरी तरह से व्यस्त रखा और वे उसको काउंटी और अंतरराष्ट्रीय मेलों में इनाम जीतने वाले प्रोजेक्ट्स की तरफ ले गए। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी ईयर्स। एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, he said. But I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time, I won.
अपनी 8वीं क्लास के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट उस वायरल बीमारी के कारण को पता लगाने की कोशिश कर रहे थे जिससे कुछ सालों बाद मोना कैटरपिलर्स मरने लग गई थी। एब्राइट ने सोचा कि ये बीमारी शायद एक बीटल की वजह से होती है और बीटल द्वारा फैलाई जाती है। उसने बीटल की उपस्थिति में कैटरपिलर को पालने की कोशिश की। एब्राइट ने बताया कि उसे कोई रियल रिजल्ट्स नहीं मिले थे, लेकिन वो जब आगे बढ़ा और दिखाया कि उसने ये प्रयोग करने की कोशिश की है तो इस बार वो जीत गए।
द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। द थ्योरी वॉज दैट Viceroys look like monarchs, but because monarchs don't taste good to birds, viceroys, on the other hand, do taste good to birds. So, the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner.
अगले साल एब्राइट के साइंस फेयर का प्रोजेक्ट इस सिद्धांत का परीक्षण करना था कि वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। सिद्धांत ये था कि वायसराय नामक तितली मोनार्क जैसी दिखती है क्योंकि मोनार्क पक्षियों के खाने में अच्छी नहीं लगती। पक्षियों को उन्हें खाना पसंद नहीं है क्योंकि उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता और इससे बिल्कुल अपोजिट वायसराय तितलियां पक्षियों को स्वादिष्ट लगती हैं। इसीलिए जितनी ज्यादा वायसराय तितलियां मोनार्क जैसी दिखने लगेंगी उतनी ही वे पक्षियों का कम भोजन बनेंगी।
स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक के ऊपर एब्राइट ने अब रिसर्च करने का सोचा और इसने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर अब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा जो अगले साल के साइंस फेयर में मैं लोगों के सामने डिस्प्ले करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी को हम नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे। आपका होमवर्क है कि आपको यहाँ तक इस स्टोरी को पढ़कर आना है। बाय बाय।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।